2015 की बात है, अप्रैल का महीना था और रात के करीब 3:30 बज रहे थे। तो दिल्ली में एक इलाका है कमरुद्दीन नगर करके, ये थोड़ा सा आउटर दिल्ली की तरफ पड़ता है और उसके कुछ 5-6 किलोमीटर आगे जाके एक और एक थोड़ा सा वो एक स्लम एरिया है जिसका नाम बवाना है, एक गांव है एक तरीके से। तो पुलिस के पास जो है इंफॉर्मेशन थी कि नीरज बवाना जो है, असल में नीरज बवाना 2013 से जो है फरार था पुलिस की कस्टडी से। तो इनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आज जो है नीरज रात में अपने घर आएगा अपने घर वालों से मिलने के लिए। तो पक्की खबर नहीं थी, ये सब कई बार ऐसे खबरें आती रहती हैं। तो ऐसे ही पुलिस ने फिर भी अपना चेक पोस्ट लगाया और उन्होंने जो है जहाँ पे इनकी जीप खड़ी थी, जहाँ पे बैरिकेड्स लगे थे, उसके 1-2 किलोमीटर और आगे, तो इनको इन्फॉर्मेशन ये थी कि ये एक वाइट कलर की वरना में आएंगे और इनको इनफैक्ट गाड़ी का नंबर भी दिया गया था। तो इनके जो है 1-1.5 किलोमीटर और आगे जहां से गाड़ी आने वाली थी, जहां से गाड़ी का आने का संभावना था, वहां पे जो है प्लेन क्लोथ्स में 2-3 पुलिस वाले खड़े थे। तो रात को 3:30 बजे, रात की अब तो सुबह हो गई है, तो ये अप्रैल 15 की बात है और कमरुद्दीन नगर, और रात के सुबह समझ लीजिए 3:30 बजे अचानक से पुलिस का वायरलेस क्रैक करने लग जाता है और इन्फॉर्मेशन आती है कि जो वाइट वरना जिसकी हम तलाश कर रहे हैं वो अभी अभी यहाँ से गुजरी है और तुरंत आपके यहाँ आने वाली है, तो आप बैरिकेड लगा के तैयार हो जाइए। तो यहाँ पे बैरिकेड लग जाते हैं और क्योंकि डिस्टेंस सिर्फ 1-2 किलोमीटर का था तो तुरंत जो है वो वाइट वरना आ जाती है उस बैरिकेड के सामने। लेकिन जैसे ही वो देखती है कि वहाँ बैरिकेड लगा हुआ है, वहाँ पुलिस वाले खड़े हुए हैं, तो ये थोड़ा सा जो है घबरा सा जाते हैं और ये गाड़ी एकदम तेज भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बैरिकेड लगा हुआ है और रास्ता भी ऐसा था कि कोई वहाँ से भाग नहीं सकता था, तो गाड़ी जो है बैरिकेड से भिड़ जाती है और अचानक से दोनों तरफ से दरवाजे खुलते हैं और दो लोग बाहर भागने लगते हैं। और इस बीच में ये सिर्फ भागते नहीं हैं, ये गोलियां भी चलाना चालू कर देते हैं पुलिस की तरफ। तो दोनों तरफ से फायरिंग होती है, ये कहिए कि गोली किसी को लगी नहीं, पर दोनों के दोनों जो थे वहाँ पे क्रिमिनल्स, उनको तुरंत पकड़ा जाता है। उनमें से एक तो काफ़ी छोटा था, पर जो दूसरा था वो जो इन्होंने सोचा था, जिनका जिनकी ये तलाश कर रहे थे नीरज बवाना की, ये वही का वही निकला। तो जो भागा हुआ था इतने टाइम से फाइनली जो है 2015 में अप्रैल में पकड़ा गया। और नीरज बवाना एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा क्रिमिनल है जिसको दिल्ली का दाऊद इब्राहिम बोलते हैं। तो अगर आप दिल्ली में देखेंगे ना, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे गैंग्स हैं, काफ़ी ज़्यादा लीडर्स आते हैं, पर इसका ही नाम क्यों पड़ा, इसी को क्यों कंपेयर किया जा रहा है किसी इतने बड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के साथ? तो इसी चीज़ को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे, इसकी कुछ वारदातें डिस्कस करेंगे। तो चालू करते हैं नीरज की ओर। तो इसके बारे में जैसा मैंने बोला कि इसको दाऊद क्यों माना जाता है, कि जैसा मैंने पहले बोला कि दिल्ली में ना कई छोटे छोटे गैंग्स होते हैं, वो अक्सर से दिल्ली के माने जो कल्चर रहा है क्राइम का, वो इसी तरीके से रहा है कि छोटे छोटे गैंग्स। लेकिन तो उसमें क्या होता था कि एक गैंग में कम से कम मान लीजिए 10 लोग से लेकर 20-30-40 लोग होते थे। लेकिन ये पहला ये जो अपना गैंग चलाता है, ये अपने नाम से ही चलाता है, नीरज बवाना गैंग के नाम से। और इसका साइज ऐसा है कि कम से कम 100-150 लोग जो है इसमें इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो इसके गैंग के लिए काम करते हैं। तो साइज इसका काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, जो कि पहले कभी था नहीं किसी के पास। दूसरी चीज ऐसी भी है कि जैसे आप बॉम्बे में देखेंगे, जब ये अंडरवर्ल्ड काफी ज्यादा वहां पे एक्टिव था, तो जितने भी गैंगस्टर्स आते थे या जितने भी छोटे छोटे गैंग बनते थे, वो कहीं ना कहीं से जुड़ जाते थे, या तो दाऊद के साथ, या तो छोटा इब्राहिम के साथ, या तो अरुण गावली के साथ। तो ऊपर वो 2-3 बड़े बड़े थे और बाकी नीचे जो भी उभर रहा है वो जुड़ जाते थे किसी ना किसी के साथ। यहाँ पे क्या है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो छोटे छोटे गैंग्स उभर के आ रहे हैं वो आज की डेट में नीरज बवाना गैंग के साथ जाके जुड़ जा रहे हैं। 1-2 और गैंग्स हैं जिनके साथ ये लोग जुड़ रहे हैं, पर सबसे बड़ा जो है इनमें से इसी का गैंग है। तो इसीलिए काफी ज्यादा बड़ा माना जाता है और इसको कंपेयर किया जा रहा है दाऊद इब्राहिम के साथ। और दूसरी चीज ये है कि इसका खौफ इतना है कि इसके जो एरिया ऑफ ऑपरेशंस हैं, जो ये दिल्ली के जो आउटर दिल्ली में जो जितने सारे गांव हैं, जितने सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वहां पे एक टैक्स लगता है जिसका नाम है नीरज टैक्स। तो GST वगैरह तो खैर वो लोग दे रहे हैं सरकार को, बट यहाँ पे एक अलग सा इसी के नाम का टैक्स चलता है, चाहे आप बाहर सब्जी वाले बेचने वाले हो या प्रॉपर्टी डीलर हो या आपकी वहां पे फैक्ट्री चल रही हो, आपको हर महीने के महीने नीरज टैक्स देना है। तो आप सोच सकते हैं कि इसका खौफ कितना होगा और ये कितना माने कितना लोग इससे डरते हैं कि छोटे से छोटा से लेकर बड़ा इसके नाम का एक टैक्स दे रहा है। तो इसके अगर इसके आप केसेस देखेंगे तो कम से कम 40 से 50 केसेस हैं जिसमें इसका डायरेक्टली नाम इन्वॉल्व है, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग। पर इनका जो इनके जो ये दिल्ली वाले गैंग्स होते हैं और जिनमें से ये नीरज भवाना गैंग भी है, इनमें से इनका जो मेन काम होता है वो एक्सटॉर्शन का होता है, रंगदारी का होता है, और दूसरी चीज़ ये थोड़ा लैंड ग्रैबिंग में जाते हैं जहाँ जबरन वसूली कर लेते हैं ज़मीन की। और प्रॉपर्टी रेट्स वैसे ही दिल्ली NCR रीजन में इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो इसलिए जो है इस चीज़ में क्राइम और माफिया का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है। तो चलते हैं इसके बचपन पे। ये पैदा हुआ था 1989 में और भवाना नाम का गांव है। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली में अक्सर जो ये गैंगस्टर्स होते हैं इनका जो आखिरी नाम होता है ये अक्सर जो है इनके गांव के नाम से जुड़ जाता है। तो वैसे नीरज का नाम नीरज सहरावत है लेकिन क्योंकि वो भवाना गांव का है तो अब उसका नाम नीरज भवाना पड़ गया है, वो उसी के नाम से जाना जाता है। तो ये भवाना में पैदा हुआ 1989 में और ये उस टाइम पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर था और फिलहाल वो एटमॉस्फेयर ऐसा भी है। असल में दिल्ली के ये जितने भी आउटर एरियाज हैं तो जो दिल्ली की सरकार थी कई साल पहले, ये 10-20 साल पहले की बात है कि उन्होंने कहा कि दिल्ली में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं हम कोशिश करते हैं इनको बाहर शिफ्ट किया जाए। उससे क्या होगा कि वो पोल्यूशन वगैरह की जितनी प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए उससे बचाने के लिए इन सबको बाहर शिफ्ट किया गया। तो ये जो आउटर एरियाज थे वहाँ पर अचानक से फैक्ट्री सेटअप होने लग गई लेकिन कभी भी ये ठीक से इनका डेवलपमेंट हो नहीं पाया। तो वहाँ पे दो चीज़ें हुई, एक तो क्योंकि फैक्ट्रीज वहाँ पे लगने लगी तो वहाँ पे लैंड का काफ़ी ज़्यादा जो है भाव बढ़ने लगा, और दूसरी चीज़ क्या है कि जो नेबरिंग एरियाज जो हरियाणा वगैरह के जो गांव थे वहाँ से ये लेबरर्स वगैरह आने लगे। लेकिन हुआ क्या कि वो इंडस्ट्रीज कभी डेवलप कर ही नहीं पाई और प्रॉपर्टी के भी रेट्स बढ़ गए। तो इस पूरे सेटअप में जो है क्या हुआ कि एक लैंड माफिया वहाँ पे पैदा होने लगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरियाँ हैं नहीं लोगों के पास, वो आए थे जिन इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए वो कभी यहाँ पे सेटल हो ही नहीं पाई। तो यहाँ के जो पूरा इन्वायरमेंट है, यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लुक अप टू करते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं जो ये सब गैंगस्टर्स जो यहाँ से निकल के आते हैं, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, पैसे, बंदूकें, ये सब देख के जो है काफ़ी ज़्यादा ये लोग प्रभावित होते हैं। और इसी एटमोसफेयर में जो है नीरज भी पैदा हुआ। तो नीरज का ऐसे तो उसके पापा एक बस ड्राइवर थे, बस कंडक्टर थे सॉरी, और उनका कोई ऐसा लेना देना नहीं था, लेकिन नीरज के जो भाई वगैरह थे, चाचा वगैरह थे, ये सब थोड़ी क्राइम की दुनिया से जुड़े हुए थे पर इतने बड़े थे नहीं, छोटी मोटी गुंडागर्दी करते थे इधर उधर। लेकिन इनमें से एक था इसका मामा जिसका नाम था रामवीर शौकीन। तो रामवीर शौकीन जो है ये दिल्ली का एक MLA भी रह चुका है, निर्दलीय लड़ा था और बाद में इसकी वाइफ भी लड़ी थी कांग्रेस की तरफ से पर वो हार गई थी। तो रामवीर शौकीन जो है एक ये बाहुबली नेता है, तो उसको पता था कि उसको इलेक्शन वगैरह जीतने के लिए एक तो वो मसल पावर गुंडों की ज़रूरत है और दूसरी चीज़ उसको पैसों की ज़रूरत है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इसको नीरज ला के देता था। तो इनके बीच में काफ़ी अच्छी साठगांठ थी, नीरज को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलती थी अपने मामा से और इसके मामा को जो है गुंडे मिलते थे इलेक्शन के लिए और पैसे वैसे मिला करते थे इलेक्शन के लिए। तो यहाँ से इसकी क्राइम जो है इसकी गतिविधियाँ चालू होती हैं। पहला जो इसका क्राइम लेकिन जो पुलिस रिकॉर्ड में आता है वो तब आता है जब ये 18 साल का था और ये हरियाणा में किसी झज्जर नाम के डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे ये चोरी करते हुए पकड़ा गया था। तो वहाँ से जो है इसका चालू होता है। नेचुरल सी बात है इन सबको छोटी चोरी के केसेस में ये लोग अंदर जाते हैं फिर बाहर आ जाते हैं तो ये सब चलता रहता है। पर इसकी जो हरकतें थी, इसकी जो गुंडागर्दी थी वो काफ़ी धीरे धीरे करके बढ़ती गई रामवीर शौकीन के नाम पर, उसके पॉलिटिकल प्रोटेक्शन में रहकर। फिर इसका एक और बड़ा मर्डर केस सामने आता है 2008 में और इससे आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने गर्म दिमाग के होते हैं। तो असल में होता क्या है ना कि इनके गांव में जैसे मैंने आपको बोला कि एक कल्चर सा बना हुआ है कि इतने सारे गैंग्स हैं, इतने सारे गुंडे हैं कि बच्चे जो हैं एक दूसरे को जानते भी हैं किसी ना किसी तरीके से। अक्सर ऐसे गैंगस्टर्स हैं जो बचपन में साथ खेला करते थे, साथ बड़े हुए और अचानक से जब बड़े हुए तो लड़ाइयाँ हो गई और आज की डेट में दोनों एक दूसरे के ऊपर गोलियाँ चलाते रहते हैं। तो इस टाइप का कल्चर है। तो इसी चीज़ में जो है 2008 में एक संदीप नाम का लड़का था और ये नीरज से काफ़ी बड़ा था और नीरज के गाँव में ही रहने वाला था। फिलहाल तो ये जब नीरज छोटा हुआ करता था तो ये नीरज को स्कूल भी छोड़ने जाता था अपनी बाइक पे। तो संदीप को जो है इसके दो और दोस्त थे रवि और पंकज करके, तो पंकज ने इसको बोला कि यार ये नीरज करके लड़का है तुम्हारे गांव का है और ये ना मेरी बहन को काफ़ी ज़्यादा छेड़ता रहता है, फ़ोन करके गंदी गंदी बातें बोलता है, तो तुम जरा उससे बात करो। तो संदीप ने उसको फ़ोन लगाया कि ठीक है। जब फ़ोन लगाया तो नीरज ने फ़ोन तो उठाया लेकिन बड़ी बदतमीजी से बात की और बोलता है कि चलो ठीक है तुम बताओ तुम कहाँ पे हो, आके बात कर लेते हैं। बोला ठीक है। तो इस वक्त आप ये समझिए कि हाँ ये गुंडा है, ऐसी बात नहीं है, पर क्योंकि कल्चर ऐसा है कि वहाँ इतने सारे लोग गुंडे हैं कि किसी को इतना ज़्यादा डर नहीं था और किसी को इतना ज़्यादा कोई वो नहीं था कि कुछ भी उल्टा हो सकता है। और बातों बातों में ये जो है इन्होंने कहा कि ठीक है। तो ये संदीप और रवि और ये पंकज ये तीनों किसी मॉल के बाहर थे, ये किसी पार्टी वार्टी से निकले थे, वहाँ दारू पी रहे थे, वहाँ पे इन्होंने नीरज को भी बुला लिया। तो नीरज अपने तीन और साथियों के साथ वहाँ पे एक गाड़ी में आता है और वहीं पे ना ये लोग डिसाइड करते हैं, दिल्ली में एक और रोहिणी का इलाका है, ये लोग डिसाइड करते हैं कि वहाँ चलते हैं, हम लोग वहाँ चल के बैठते हैं। तो ये लोग गए, किसी का फ्लैट था उस दिन खाली था, इनके पास चाबी थी, ये गए वहाँ पे। रवि ने काफ़ी ज़्यादा पी रखी थी तो वो जाके रूम में सो गया। तो संदीप और पंकज यहाँ बैठे हुए हैं और नीरज और उसके तीन और साथी बैठे हुए हैं और ये लोग दारू पी रहे हैं। तो इतनी देर में वही संदीप ने फिर से बात छेड़ी कि तू बच्चा था जब मैं तेरे को स्कूल जाके छोड़ा करता था और अब तू इतना बड़ा हो गया है कि तू मेरी दोस्तों की बहनों को छेड़ रहा है और जब मैं तुझे फ़ोन कर रहा हूँ तो तू बदतमीजी से बात कर रहा है। तो इसी तू तू मैं में जो है अचानक से संदीप उठता है और नीरज को एक झापड़ मार देता है और वहीं पे जो है नीरज थोड़ा सा पगला सा जाता है। उसने अपनी तो बंदूक निकाली ही निकाली, जो उसके साथ के साथी थे उनमें से एक था नवीन बाली जो कि आज की डेट में इसका राइट हैंड मैन है, उसको भी बोलता है अपनी भी बंदूक निकाल, और जो बाकी दोनों साथी थे उनको बोलता है कि गेट पे जाओ, अब कोई बाहर नहीं जाना चाहिए और कोई अंदर नहीं आना चाहिए। और इतनी देर में जो है ये संदीप को काफ़ी ज़्यादा गाली वाली देने लगता है और उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज से जो है गोली से मार देता है। बस इतनी छोटी सी बात को लेकर उसका वहीं का वहीं मर्डर कर दिया। इतनी देर में रवि भी बाहर आ जाता है, जब उसको आवाज़ें आती हैं सब, तो वो भी कुछ इससे पहले कि कुछ बोले नवीन वाली जो नीरज का साथी था वो उसको गोली मार देता है। और ये इतने इतने गर्म हो गए थे कि ये दोनों जाके जो है माने दो लोगों को ये गोलियां मारे जा रहे हैं, माने पहले नीरज ने क्या कहते हैं संदीप को मारा और नवीन ने रवि को मारा, लेकिन अब जाके नीरज रवि को मार रहा है और नवीन जाके अपने ये पहले संदीप को मार रहा है। ये मरे हुए हैं पर फिर भी इनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। इतनी देर में जो पंकज था जो तीसरा लड़का था वो गेट की तरफ भागता है लेकिन उसको जाने नहीं दिया जाता है बाहर। तो नीरज आता है और वो बड़ा पैर वैर पे गिरने लगा कि मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो, तो लेकिन नीरज माना नहीं, नीरज ने जो है उस पर भी बंदूक उसके सर पे रखी और मारना चालू किया। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी पंकज की कि वहाँ पे जो गन है वो जैम कर गई और पता नहीं इनके दिमाग में क्या हुआ उस वक्त, कैसा हुआ कि इन्होंने इसको जाने दिया वहाँ से, ये डरा धमका के कि अगर किसी को बताया तो तुझे भी मार देंगे। तो पंकज काफ़ी डर गया, नेचुरल सी बात है, उसने दो लोगों को मरते हुए अपने सामने देखा है। तो वो घर भागते भागते जाता है, वहाँ से वही है सब फैमिलीज को बताया जाता है, पुलिस आती है, ये सारा होता है। लेकिन ये लोग जो है इस केस में बच गए क्योंकि पंकज जो है और जो बाकी थोड़े बहुत विटनेसेस थे इधर उधर ये हॉस्टाइल टर्न कर गए कोर्ट में, इन्होंने इनकार कर दिया कि हम तो इनको जानते ही नहीं हैं। तो नेचुरल सी बात है इनको डराया धमकाया गया था, इनकी काफ़ी ज़्यादा पकड़ तो थी अपने इलाके में नीरज वगैरह की कि इनके अगेंस्ट जो है कोई गवाही दे नहीं सकता था। तो ये चीज़ हो गई और ये था, तो ये बच तो गया लेकिन इसका नाम जो है अभी भी इतना ज़्यादा मीडिया में नहीं आ रहा था, माने इसका कोई इतना खौफ नहीं था बाहर अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन के बगैर। इस बीच में जब ये जेल वेल जाता रहता था तो किसी को टाइमलाइन नहीं पता है, तो वहाँ पे ये एक जब जेल में था तो वहाँ पे एक किसी से मिलता है जिसका नाम था फजल उल रहमान। अब फजल उल रहमान जो था ये दाऊद इब्राहिम का बहुत पुराना साथी था, कम से कम 20 साल से दाऊद के लिए काम कर रहा था। तो यहाँ पे जो फजल उल रहमान है इसने नीरज को एकदम सही तरीके सिखाया कि पुलिस से कैसे बचना होता है, रंगदारी कैसे करनी होती है, कैसे लोगों को डराया जाता है, कैसे लोगों को धमकाया जाता है। तो ये सब से जो है यहाँ से जो है नीरज को एक्चुअली में ट्रेनिंग मिली है कि दिमाग कैसे लगाना चाहिए, सिर्फ बंदूकें नहीं चलाना चाहिए। तो वहाँ से निकलने के बाद जो है नीरज का जो है क्राइम जो है थोड़ा सा सीरियस हो गया और वो दिमाग से और शातिर भी हो गया। तो इनके मर्डर्स चलते रहते थे बट आपस गैंग वॉर्स में चलते रहते थे। इसने जो है अपने जिनसे ये रंगदारी लेता था उनकी आदत होती कि एक बस ये घर के बाहर भिजवा के वहां गोलियां चलवा देते थे, वहां उनको मारते नहीं थे। और अगर बात आगे पहुंच जाए तो वो अगर मान लीजिए किसी को उठा लेते थे तो ला के उसको एक रूम में बंद करते थे, उसके आंख पे पट्टी बांधते थे और उसके चारों तरफ गोलियां चलाते रहते थे। उसको नहीं मारते थे, उस आदमी को ये बोला जाता था कि हम तुझे मार रहे हैं, पर उसको गोली नहीं लगती थी। तो लोग इतना डर जाते थे कि खुद ब खुद जाके पैसे देने लग जाते थे। तो ये वाला जो है इसका शातिर था, इसको पता था अगर ये किसी को मारेगा तो पुलिस इसके पीछे पड़ जाएगी। तो इस चक्कर में जो है ये बड़ा होता गया। और इसके साथ दूसरी चीज ये हुई कि उस वक्त का जो दिल्ली का काफी बड़ा डॉन था, जो सबसे जाना माना था, उसका नाम था नीतू दबोदिया। तो ये इसने जो है नीतू दबोदिया के साथ हाथ मिला लिया। तो ये दोनों जो है अपनी कई वारदातों को अंजाम देते रहे और काफी आगे निकलते गए और काफी जाने माना इनका गैंग हो गया। लेकिन जैसा कि अक्सर गैंग और गैंगस्टर्स में होता है, इनके बीच भी लड़ाई हुई और ये भी अलग हो गए और एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। तो 2013 में जो है नीतू दबोदिया का एनकाउंटर हो जाता है पुलिस के द्वारा। तो जब नीतू दबोदिया मर गया, इतने बीच में इस नीरज बवाना ने और भी जो इसके माने राइवल्स हुआ करते थे उनको धीरे धीरे करके वैसे भी मार ही रहा था। ये शातिर तो हो ही रहा था और इसको पैसे भी काफी ज्यादा मिल रहे थे जिस तरीके से ये रंगदारी करता था, और इसका पॉलिटिकल प्रोटेक्शन भी था अपने मामा की तरफ से। तो उसके बाद जो है ये असली डॉन जो है बाहर बन के आया है। वहां 2013 के बाद जो है वो अनडिस्प्यूटेड जिसे कहते हैं सबसे बड़ा डॉन बना। और लोग जो है और भी ज्यादा जो छोटे छोटे ये जो लड़के होते हैं जो क्राइम की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं वो इसकी गैंग के साथ जुड़ने लगे और ये और भी ज्यादा मजबूत होता गया। तो फिलहाल तो ये जेल में है लेकिन फिर भी जो है इसकी गतिविधियां चालू हैं। आज भी ये अंदर से फोन किया करते हैं और रंगदारी लेते हैं और ये सब है। पर हर क्रिमिनल की लाइफ थोड़ी सी लिमिटेड तो होती ही होती है, वो कहीं ना कहीं तो गलती कर ही देते हैं। तो इसी के साथ क्या हुआ कि इसका एक साथी हुआ करता था अमित भूरा करके। तो अमित भूरा को उत्तराखंड पुलिस ने पकड़ा हुआ था और वो उसको पेशी के लिए कोर्ट में लेके आ रहे थे बागपत। बागपत यूपी में है, एनसीआर रीजन में आता है। तो वहाँ पे उसकी कोई हियरिंग थी। तो ये 2014 की बात है, दिसंबर में। बागपत में एक छोटा सा कोई ट्रेन स्टेशन पड़ता है वहाँ पे, वो मंडी का स्टेशन है जहाँ पे अक्सर ये फल फूल जो उतरते हैं मार्केट के लिए। तो वहाँ पे जो है 3 से 4 पुलिस वाले थे उत्तराखंड पुलिस के देहरादून से, और ये इसको लेके आ रहे थे अमित भूरा को। तो ये वहाँ से उतरते हैं और इनके पास काफ़ी कार्बाइन्स थी, AK-47 वगैरह गन्स थी इन पुलिस वालों के पास। तो ये जो है इसको ऑटो में बैठाते हैं अमित भूरा को और लेके जा रहे होते हैं। तो अचानक से जो है ऑटो को रोका जाता है, दो लोग उसमें जबरदस्ती बैठ जाते हैं किसी तरीके से आगे ऑटो ड्राइवर के साथ, जो बड़े बड़े टेम्पोज जो होते हैं। थोड़ी ही आगे ये लोग जाते हैं कि एक SUV उनका सामने आती है, वो ऑटो को जो है रोकती है किसी तरीके से। और इतनी देर में जो आगे जो दो लोग बैठे थे उन्होंने चिली पाउडर जो है पुलिस वालों की आंख में फेंका, उनसे बंदूकें छीनी और अमित भूरा को भगा के ले गए। तो इनके बीच में वैसे ये काफ़ी आम बात है कि कोर्ट में शूट आउट करना और पुलिस की कस्टडी से भगाना। तो इसलिए अगर आप कभी भी इनका YouTube वीडियोस वगैरह देखेंगे जब ये कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में आते हैं तो इनके साथ कम से कम 50 से 60 पुलिस वाले होते हैं, काफ़ी हैवी गन्स के साथ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं लाइफ जैकेट वगैरह के साथ, क्योंकि इनको भगाने का डर रहता है कि इनको जो है इनके साथी भगा लेंगे, और दूसरी चीज़ ये भी रहता है कि जो इनके राइवल्स हैं वो आके इनको मार देंगे। तो खैर ये वाला थोड़ा सा था, तो इसको भगा लिया इस तरीके से। लेकिन बंदूकें भी ले गई पुलिस वालों की। तो ये बंदूकें ले गए ना, उस चक्कर में जो है काफ़ी ज़्यादा मीडिया में ये बात फैल गई कि अब जो है भगाना तो छोड़ो, अब ये पुलिस की बंदूकें भी लेके जा रहे हैं, हथियार भी लेके जा रहे हैं। तो विधानसभा में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल मच गई कि क्या हो रहा है। तो उसके बाद जो है पुलिस काफ़ी ज़्यादा इसके पीछे पड़ने लगी, इसको बहुत ज़्यादा ट्रैक करने लगे, और स्पेशल सेल वाले एक स्पेशल टीम है दिल्ली पुलिस की काफ़ी ज़्यादा, और ये लोग बड़े बड़े क्राइम्स या बड़े बड़े गैंगस्टर्स के पीछे ही पड़ते हैं, ये स्पेशल सेल के अंडर काम करते हैं। तो जो 2015 में इसको पकड़ा था, तो ये दिसंबर 2014 में इसकी ये घटना घटी है जहाँ पे इसने अमित भूरा को भगाया है, और अप्रैल 2015 तक जो है स्पेशल सेल ने इसको पकड़ लिया। तो फिलहाल तो ये जेल में है, ये है इसकी कहानी कि इतना बड़ा है। लेकिन आज भी इसकी गतिविधियों पे कोई ये नहीं हुआ है कि कोई कमी नहीं है। आज भी ये अंदर जेल से डराते हैं, आज भी लोगों को धमकाते हैं, और धीरे धीरे करके जो है इसने जो है अपने कंपटीशन को भी ख़त्म कर दिया है। जितने भी राइवल गैंग्स थे उनको मार दिया है, छोटे मोटे राइवल्स अभी भी रहते हैं, तो उनके साथ भी, इनफैक्ट इसके साथ एक बहुत बड़ा केस था जहां पे इसने जेल वैन में ही मार दिया था अपने एक राइवल गैंग को। इसके बारे में हम किसी और केस में कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका इतना ज़्यादा खौफ फैला हुआ है। तो फाइनली मैं एक इस चीज़ से एंड करूंगा कि असल में जब ये टिकटॉक तो फिलहाल बैन हो गया है, लेकिन खैर यूट्यूब पे इनके कई वीडियोस रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले ना जेलों में फ़ोन वोन तो बहुत छोटी मोटी बात है आजकल, वहीं से वो लोग वीडियो कॉल करके धमकाते भी हैं जब रंगदारी लेते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है ना कि जो इनके गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इनसे काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बोला, प्रभावित होते हैं। तो जो जेल में भी ये लोग अंदर से टिकटॉक वीडियोस बनाते थे जो ये गैंगस्टर्स होते थे, और जेल के बाहर जब भी इनकी हियरिंग वगैरह होती थी, पेशी होती थी कोर्ट में, तो ये जो छोटे छोटे इनके गाँव के बच्चे हैं वो भी आके इनका वीडियो बनाते हैं और खूब वाह वाह करते हैं इनकी, और खूब भैया भैया, क्योंकि इनसे प्रभावित हैं काफ़ी ज़्यादा, इनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं इनके पैसे से, इनके पावर से। तो जब भी ये वीडियोस अपलोड होते थे तो हमेशा होता था हैशटैग नीरज बवाना गैंग, हमेशा उस हिसाब से ये लोग करते थे। तो पिछले एक साल में ही, असल में जब भी दिल्ली के तिहार में जो गैंग्स, इतने सारे गैंग्स हैं जैसे कि मैंने आपको बोला था, जब भी इनको रखा जाता है ना तो एक एक बैरक में एक ही गैंग के आदमी रखे जाते हैं, वरना कई बार अंदर भी मर्डर हो चुके हैं, वहां एक दूसरे को मार पीट के ये लोग मार देते हैं। तो इसकी लेकिन वारदातें अंदर से इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी नीरज बवाना की, कि इसको जो है एक स्पेशल बैरक में शिफ्ट किया गया। वो बैरक ऐसा है जहाँ पे एकदम ये अकेला होता है, आइसोलेशन में है। तो इसके बैरक में अभी आज की डेट में एक छोटा राजन है, और कुछ दिन पहले तक जो जिंदा थे मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो बिहार के विधायक रह चुके हैं और वहाँ के भी जाने माने क्रिमिनल हैं, तो वो तो खैर मर गए कुछ हफ्ते पहले कोविड के चक्कर में, लेकिन ये वहाँ पे इसको डाला गया है। और वहाँ पे इसने कोर्ट में एक अर्जी भी डाली है कि मैं पागल हो रहा हूँ अकेले, और मेरे को फ़ोन चाहिए, मेरे को आईपॉड चाहिए, टीवी चाहिए, ये सब ये कुछ मांगे इसकी आ रही हैं कि मैं पागल हो रहा हूँ। तो इसको जो है एकदम अलग कर दिया गया है गैंग से। तो खैर ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि धीरे धीरे करके, जब पहले ये था अपने बैरक में तो हैशटैग नीरज बवाना गैंग होता था, इसको जब वहाँ पे अलग से बैरक में भी डाला गया तब भी नीरज बवाना गैंग था। लेकिन अब धीरे धीरे करके जो है, शायद क्योंकि वो अब कट चुका है, उसको किसी से मिलने नहीं दिया जाता है, वो अपने गैंग के साथ टच में नहीं है, अब धीरे धीरे करके उसकी गैंग की कमान जो है उसका राइट हैंड संभाल रहा है जो है नवीन बाली, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, जो संदीप और रवि का मर्डर था जिसमें गोलियां चलाई थी। तो अब जो है धीरे धीरे करके लोग हैशटैग नीरज बवाना गैंग नहीं डालते, हैशटैग नवीन बाली गैंग डालने लगे हैं। तो शायद ये समय का प्रकोप है कि धीरे धीरे करके, इसका समय था नीरज बवाना का, ये इतना ऊपर उठा, और अब जो है धीरे धीरे करके इसका समय खत्म हो रहा है, और दूसरा जो क्रिमिनल है, जो इसका राइट हैंड है, वो जो है अब गैंग की कमान संभालने में लगा हुआ है, और शायद वो अगला लीडर है। तो खैर आज की थी हमारी ये कहानी, और अगले हफ्ते हम लेके आएंगे आपको एक नीरज बवाना के गैंग से ही एक गैंगस्टर है राहुल काला करके, और उसकी भी काफी ज्यादा विचित्र कहानी है। तो अगले हफ्ते जो है हम उसको लेके आएंगे और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।